Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। जब कभी कोई परोस दे आइसक्रीम तो फिर बड़ा आनंद आ जाता है कि याहो ठंडक मिल गई। लेकिन रोज रोज मैं आपको आइसक्रीम खाने के लिए इतना ही कहूँगा, लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक आइसक्रीम खिलाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं और मेरा मानना है कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो रोज आपको आइसक्रीम खानी जरूरी है। लेकिन वो वाली आइसक्रीम नहीं, मैंने कहा कि मैं आपको एक सुंदर सा आइसक्रीम आज पेश करने जा रहा हूँ समाधान की ओर से। और ये आइसक्रीम है मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, विचार भी कीजिएगा इस पे। आ अर्थात आत्मविश्वास, ई अर्थात इच्छा शक्ति, स अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण, क्री अर्थात क्रियाशीलता और म अर्थात मर्यादा। ये पांचों ऐसी चीजें हैं जो सचमुच जीवन को सफल करने के लिए बहुत 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 आवश्यक हैं। हम चाहते तो हैं कि हम अपने हर फील्ड में जहाँ पे भी हमने कदम रखा है सफल हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में यदि कमी रह जाती है तो सफलता हमसे दूर हो जाती है। तो है ना अच्छी बात, इस आइसक्रीम को आप रोज़ रोज़ खाते रहिए, इसको आप हर सीज़न में खा सकते हैं, केवल गर्मी की बात नहीं है। और यदि ये जीवन में है तो सचमुच हमारा जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। इस सुंदर मीठे आइसक्रीम के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, प्राता जी का स्वागत करते हैं। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
इस हमारी आज की आइसक्रीम के बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा था आपकी बात सुनकर कि ये आइसक्रीम तो ठंडा कर ही देती है, लेकिन एक सुंदर आइसक्रीम भी रोज खाएं, जो आपने बताई वो तो है ही अति सुंदर।
जी जी,
उसी से जुड़ी हुई कि मन को भी ठंडा कर दे, ऐसी आइसक्रीम है जो आपने सुनाई। और मन को ठंडा रखना सचमुच बहुत जरूरी है आजकल, और इसके लिए संपूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है, जो आपने बताई। आइसक्रीम का पहला ही शब्द आ, आत्मविश्वास बहुत सुंदर एक चीज है जिससे हम मनुष्य अपने मन को ठंडा कर सकते हैं, और दूसरों की बातों का जो इफेक्ट होता है उससे हम बहुत ज्यादा बच सकते हैं, क्योंकि आजकल दूसरों की बातें मनुष्य के मन को जल्दी गर्म करती हैं।
जी, जी जी।
लेकिन अगर सचमुच हम आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएं और हम क्रियाशील भी हों और हमारे अंदर मर्यादाएं भी हों, सब कुछ हो जो आपने पांच बातें बताई, तो हम मन को ठंडा रख सकते हैं।
जी जी, और जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। पता जी, आइसक्रीम वैसे है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन कई लोग शायद इसे खा नहीं पाते हैं। कैसे सहज रूप से, मतलब चाहते तो हैं मेरे जीवन में क्रियाशीलता भी हो, मेरे अंदर आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा हो। लो, आत्मविश्वास तो किसी को पसंद ही नहीं है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जीवन में आ जाए ऐसा लगता है, लेकिन कैसे सहज हो। ये आइसक्रीम तो खरीद के खाया जा सकता है, लेकिन इस आइसक्रीम को कैसे हम अपने जीवन में ले आए।
वो आइसक्रीम भी जो बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, ठंड से कईयों को परेशानी तो होती है, कईयों की पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है, तो कईयों का गला बैठ जाता है, जिनको कफ की बीमारी है, ठंडी जल्दी लगती है, उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन मन को ठंडा करने की बात बहुत ही सुंदर है, जो सबके लिए समान रूप से प्रिय है और आवश्यक है। तो है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, और ये आइसक्रीम सबको खानी है। आत्मविश्वास भी सभी को बहुत बढ़ा चढ़ा के रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी हर फील्ड में मनुष्य को जरूरत होती है। चाहे स्टूडेंट्स को ले लीजिए, चाहे कोई कंपटीशन दे रहा हो, इंटरव्यू दे रहा हो, नौकरियों में है जहाँ अनेक चैलेंजेज मनुष्य के सामने आती हैं, कोई पॉलिटिशियंस है उनके लिए, या बिजनेसमैन है, या कोई वैज्ञानिक है, सब में आत्मविश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, इंग्लिश में आत्मविश्वास के लिए है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल वैसा ही शब्द जो इसको बढ़ाता है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। सो सेल्फ रेस्पेक्ट विल लीड अस टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत चाहता है तो उसको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, जिसकी हम चर्चा करते आए हैं पिछली बार, आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें ये बात जोड़ देना चाहता हूँ जो मैंने शुरू की थी, मन को यदि शांत रखा जाए तो मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, जिसे हम दूसरी चीज़ कहते हैं विल पावर, पावर ऑफ माइंड, ये बहुत बढ़ जाती है। और यही मन की शक्ति मनुष्य में आत्मविश्वास को जागृत करती है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ आत्मविश्वास की कमी होती है, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो ये काम नहीं होगा। इवन ड्राइविंग सीखते हुए बहुतों को आत्मविश्वास नहीं होता, और कई लोग ऐसे हमने देखे, मैंने ड्राइविंग सिखाई 3 दिन में यानी 3 घंटे में, उनको सिखा के कह दिया अब जाओ थोड़ा चक्कर लगा के आओ, थोड़ा बहुत डरते थे, एक चक्कर लगा के आए डर निकल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, कह रहे हम तो चला सकते हैं, दूसरा चक्कर लगा के आए और तीसरा लगा के आए फुल, फिर मैंने कहा अभी आप उसे अब रोड चलो, उतर गए, कॉन्फिडेंस आ गया। हर फील्ड में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है मनुष्य को, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और पहले जो डर सूक्ष्म मनुष्य के अंदर बना हुआ है, जो कईयों के अंदर हर काम करने में डर होता है, यानी स्विच भी दबाएंगे ना डरेंगे करंट ना पकड़ ले, ये बहुतों की ऐसी मेंटेलिटी आज तक हमने देखी, बाइक पे बैठेंगे पहले ही डरेंगे कोई लगा ना दे, हम तो नहीं लगाएंगे, कोई टक्कर ना मार दे हमें, तो ये जो डर है ये मनुष्य को कॉन्फिडेंट होने नहीं देता है। इसलिए ये डर भी निकले, प्रैक्टिस भी बहुत करते चले, और अपनी सफलता में विश्वास हो, मतलब ये हम अचीव करेंगे ही, ये हमें प्राप्त होगी ही, हम इस चीज में सक्सेस होंगे ही, ये संकल्प भी मनुष्य को आत्मविश्वासी बना देते हैं।
तो पूरे विश्वास के साथ कूद पड़ना चाहिए, जब तक डरते रहेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी और सफलता भी दूर हो जाएगी। और वैसे एक ड्राइविंग स्कूल खोला जा सकता है ब्रदर जी, यदि आप 3 घंटे में सिखा
मैं तो भैया को सिखा दिए है, क्योंकि उसमें सिखाने वाले की डिपेंड करता है वो क्या क्या सिखाता है।
जी जी,
मैं तो एक बार बैठा के वैसे ही बिना गाड़ी चलाए सारे सिस्टम सिखा देता हूँ, गियर ऐसे डालना है, ये ऐसे दबाना है, ब्रेक ऐसे मारना, खड़ा ऐसे करना है, और फिर थोड़ा सा सिखाता हूँ कि चलो थोड़ा सा, मैंने उनके उनको हाथ पकड़ता, मैं पास बैठता हूँ और चलो अब बस, तो लोग चलने लगते हैं और मैं बता देता हूँ तुम डरो नहीं, मैं बैठा हूँ, ये हैंड ब्रेक मेरे हाथ में है, मैं आप रोक लूंगा गाड़ी, धीरे ही चलनी है। तो हर चीज में कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। देखिए आजकल मैं देखता हूँ कि बिना पढ़े लिखे लोग नेट चला रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको इंग्लिश आ गई और नेट पे बहुत सारी चीजें वो सीख गए हैं, तो ये कॉन्फिडेंस की बात है ना।
जी जी,
हर फील्ड में कॉन्फिडेंस मनुष्य को सफलता की ओर ले चलता है।
बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक जो अंतिम बात है ब्रदर जी, मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, मुझे लगता है अनुशासन कह लें, मर्यादा कह लें, लेकिन कई बार मर्यादा बंधन जैसा कईयों को प्रतीत होने लगता है और लगता है कि क्या है, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, तो खास करके जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो इस चीज को कई बार बंधन सा महसूस करते हैं। आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे, इसकी महत्ता क्या है और क्यों इसे अपने जीवन में लाना चाहिए?
देखिए जो हमारे यूथ हैं आजकल वो एजुकेटेड हैं और बड़े ओपन माइंडेड भी रहते हैं, तो कुछ चीजें उनके लिए बड़े नेचुरल हैं। जैसे मान लो यंग हो गए, लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हैं, हंस बहल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं होती। बुराई उस चीज में है कि ये हंसी हंसना बहलना उनका कहीं और परिवर्तित हो जाए, और यहाँ भी हो जाता है कि आपस में बहुत हंसते बहलते हैं तो फिर एक दूसरे को डोमिनेट करने का सोचने लगते हैं, फिर एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं उन्हें, तो कईयों में हीन भावनाएं आ जाती हैं, और फिर उनमें ऐसा होता है मान लो एक व्यक्ति थोड़ा कमजोर है, वो शाही नेचर का है, तो उसे चिढ़ाने लगेंगे उसको, मतलब हीन भावनाएं उसमें ला देते हैं। लेकिन मर्यादाओं में ध्यान रखना होता है कि जब हम आपस में फ्रेंड सर्किल में बात कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य बहुत सुंदर होना चाहिए, हम हर एक को एनकरेज करें, हर एक को अपने उसमें इन्वॉल्व करें। होता क्या है ऐसे में, मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति लीडर होता है और वो चाहता है बस मैं ही बोलूँ, मेरी सब बात सुने, मैं अपनी बात मनवा के ही रहूँगा, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत ज़्यादा तर्क है, ये ठीक है, लेकिन दूसरे को भी ऊपर लाना। अब देखिए मर्यादा और डिसिप्लिन में पहले बोल की ही कहना चाहूँगा, बोल अगर हमारे मर्यादित हैं, बहुत अच्छे हैं, दूसरों को उमंग दिलाने वाले हैं, वातावरण में खुशी भी खेरने वाले हैं, या हमारे बोल ऐसे भी हो सकते हैं दूसरे के चित्त को शांत कर दें, उसकी टेंशन को समाप्त कर दें, और मर्यादित बोल, गुस्से के बोल नहीं, अपमान करने वाले बोल नहीं, बड़ों से बोल रहे हैं तो कैसे बोल होने चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इन सब सीमाओं में रहना, ये मर्यादाएं होती हैं। मर्यादाएं अलग अलग फील्ड की हैं, देखिए एक अधिकारी है नीचे उसके साथ काम करने वाले, दोनों के बीच में एक मर्यादा है, माँ बाप और बच्चों के बीच में एक मर्यादा है, ऐसे ही पति पत्नी को भी अपने बीच में एक मर्यादा रखनी चाहिए, हर रिलेशनशिप की मर्यादा। तो ये मर्यादा बहुत सुंदर चीज है, और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही एक लक्ष्य है, और हम लोगों ने ये डिसिप्लिन इतने नेचुरल रूप से अपने जीवन में अपनाए हैं कि वही हमारा जीवन है। अब हमें तो कभी ये लगता ही नहीं कि ये बंधन है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं शांतिवन में भी 500 लोग रहते हैं, सभी युवा ही हैं लगभग, मतलब 5-7 को छोड़ के सब युवा आपको दिखाई देंगे। सभी ने ये मर्यादित जीवन बड़ा नेचुरल रूप से अपना लिया है। उनकी मर्यादा है कि वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे, तो सब नहीं जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म मनुष्य क्यों देखने जाता? हाँ भाई चलो कुछ एंजॉयमेंट होगा, कुछ अच्छा अच्छा है, एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन उनको स्पिरिचुअली इतना आनंद है यहाँ कि उस ओर उनकी बुद्धि नहीं जाती। तो एक अच्छी मर्यादा को जीवन में लाने के लिए उसको जो चीज रिप्लेस करे वो होना बहुत जरूरी होता है। तो सचमुच हमारे संबंधों में मर्यादाएं, हमारे कामकाज में मर्यादाएं, कामकाज की मर्यादाएं हैं बहुत। मर्यादा को तोड़कर जो लोग चलते हैं उनको आगे कठिनाई होती है, धोखा होता है।
लेकिन मर्यादाएं आज ज्यादा टूटती हुई नहीं दिख रही हैं?
सारी ही टूटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मर्यादाओं पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अब आप रामायण पढ़ लीजिए, राम को शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है कि अगर वो केकई से बात कर रहा है तो बहुत मर्यादा में, अगर वो अपने बाप से राजा से बात कर रहा है तो बहुत मर्यादा में, अगर वो छोटों से बात कर रहा है तो बहुत मर्यादा में, अगर वो शत्रु से बात कर रहा है तो बहुत मर्यादा में। तो आज तो वो चीजें रही नहीं है, और इसका कारण यही था कि ये लोग पूरी तरह स्पिरिचुअल थे।
बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी। वो एक बात कहते हैं ना व्रता जी कि यदि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तो ऐसी स्थिति हो जाती है यदि मर्यादाएं टूटे तो। चलिए उम्मीद करते हैं सभी मर्यादाओं में रहें और अपने जीवन का आनंद लें। कुछ मेल्स हैं व्रता जी, अब उनकी ओर लिए चलता हूं आपको। ये मेल हमारे पास भेजा है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, ये कहते हैं ओम शांति सूर्य भाई जी, मुझे एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि एक आंटी ने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मुझे कुछ गलत बोला था, वो बात मेरे दिमाग से रिमूव नहीं हो रही है। एवरी डे मुझे वो बात परेशान करती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बात ही बार बार मेरे जेहन में घूम रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपनी इस बात को जो मेरे अंदर चली गई है उसे रिमूव करूँ। 8 महीने हो गए हैं मुझे विद्यालय से जुड़े हुए, एक बात के कारण मैं बहुत परेशान हूँ।
देखिए हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ऐसा सुंदर संगठन है कि जिसमें हम सबको आदिकाल से ही बहुत कुछ सुनने को मिलता रहा। हम सुनते रहे और हंसते रहे। हंसते इसलिए रहे कि हम सोचते थे इन बेचारों को रियलिटी का पता नहीं है, प्योरिटी कितनी बड़ी मानता है, हमारे बाबा में कौन ऊपर से आते थे, स्वयं भगवान आकर शिक्षाएं देते थे, ज्ञान देते थे, उनको इन चीजों का बेचारों को पता नहीं, इसलिए विरोध करते हैं। हम विरोध सुनते आए और आगे बढ़ते आए। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय छोटे से पौधे से आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता। और मैं इनको जब कहूंगा कि जब 8 मास से इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, तो इनको उसकी सुनी हुई बात को अपने जेहन में रखने की जरूरत क्या है? कई लोग कहते हैं अरे वहां तुम जाओगे तुम्हारा सारा माल पैसा वो ले लेंगे। अभी इन्होंने देखा कि वहां तो कुछ भी लिया ही नहीं, आज तक किसी ने कुछ मांगा ही नहीं, स्वेच्छा से जिसको जो बॉक्स में डालना है डाल दो।
बल्कि यहां तो सर चीज निःशुल्क है व्रता जी, हर जगह पहले तो शुल्क देखते हैं कि इतना शुल्क लगेगा, यहां सब चीजें निःशुल्क हैं।
ऐसे ही कह दिया अरे वहां जाओगे तो तुम्हारा जीवन ही खराब हो जाएगा, लोग तुम्हें समाज से भी निकाल देंगे, ये वो। उसने देखा यहाँ जाते ही तो जीवन ही सुंदर हो गया
जी।
तो जब मनुष्य अपनी आंखों से देख रहा है तो फिर उससे उसमें डाउट करने की जरूरत क्या? मैं तो सबको कहूंगा आइए और देख, बल्कि हमारे यहाँ आए यही चैलेंज हमने सबको किया। हमारे कुछ परम मित्र जिन्हें हम परम मित्र कहते हैं वो यहाँ आए। देखिए बिल्कुल खुली हुई बात है, भारत के कुछ संप्रदाय हम लोगों का विरोध करते थे क्योंकि ये ज्ञान शास्त्रों से थोड़ा भिन्न है, ये भक्ति पूजा पाठ से थोड़ी अलग एक सिस्टम है, स्पिरिचुअलिटी है। तो पंडित पुजारी आचार्य विद्वान हमारा विरोध करते थे, हमने उनको वेलकम किया, यू आर वेलकम, यू आर इनवाइटेड। आए लोग, अब से 25 साल पहले से हमारे पास लोग आए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, शंकराचार्य आए, अनेक गुरु आए, महंत आए, अच्छे अच्छे विद्वान सन्यासी आए। जब यहाँ आए तो उनकी आंखें खुल गई और देखा कि जो कुछ वेद शास्त्र कह रहे हैं हमने उसको केवल रटा हुआ है, वो इनके जीवन में है। तो वेद शास्त्र पुस्तक नहीं, इनका जीवन ही गीता है। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो नतमस्तक हो गए और विरोध भावना समाप्त हो गई। मैं तो बिल्कुल खुलेआम सबको बताता हूँ, सबसे ज्यादा विरोध तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हमारे संत महात्मा और महामंडलेश्वर करते थे। कई सम्मेलन हम लोगों ने यहाँ आयोजित किए, कई माना दसियों किए होंगे, बल्कि 15 किए। लोग आए, उन्होंने देखा, हमारी जीवन शैली देखी, इस ज्ञान को गहराई से देखा, स्टडी की। भले ही सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो सदा से चलते आए और वो चलते रहेंगे, लेकिन किसी भी सिद्धांत का प्रैक्टिकल स्वरूप है मनुष्य का जीवन। सिद्धांत जो पुस्तकों में लिखे हैं उनसे अगर आपका जीवन डिवाइन हो गया, आपके चेहरे पे तेज आ गया, आप में त्याग और सादगी की भावना आ गई, आपका जीवन पुण्य कर्मों से भरपूर हो गया, तो माना जाएगा ना दैट फिलोसोफी इज ट्रू। तो ऐसे ही मैं कहूंगा, जब इसने अपनी आंखों से 8 मास से सब कुछ देख लिया, तो भला वो बात इसने क्यों अपने पास रखी? बहनों से जाके क्लैरिफाई कर लो, भाई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या है सत्य मुझे आप बता दो, तो इनका स्पष्ट हो जाएगा और इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक भी निगेटिव बात यदि अपने मन में रखे रखती है तो इनकी खुशी जाती रहेगी। तो खुशी को परमानेंट एवर लास्टिंग बनाने के लिए इनको बात बहनों से क्लियर करके समाप्त
कर देनी चाहिए। कई बार बता जी, क्या ऐसा नहीं होता, ये चलिए बहुत ही स्वर्ग जैसा परिवेश है यहाँ का, सेवा केंद्रों का भी परिवेश ऐसा है, लेकिन जैसा आप कई बार कहते हैं कि आए तो सभी कलयुग से ही निकल के आए हैं, पुराने संस्कार लेकर के आए हैं, तो यदा कदा क्या कभी ऐसी ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है? जैसे कई बार कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके कारण ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा होता है?
बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों लोग तो समर्पित हैं
जी,
करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, तो हर एक जैसा कलयुग से ही आया है और अपने संस्कार लेकर आया है, न जाने उसका पिछला 20 साल का 30 साल का जीवन कैसा व्यतीत हुआ है। वो यहाँ बहुत जल्दी सुधार कर लेता है अपने में, या उसे देर लगती है, या उससे कोई गलती होती रहती है, तो निश्चित रूप से जहाँ एक बहुत बड़ा कार्य चलता है वहाँ एक 5% मार्जिन होती है, कोई कुछ गलती कर देता है, किसी ने कोई और बात कर दी। लेकिन होता क्या है, जैसे हिंदी में एक कहावत है कि 30 बार तुम किसी को हंसाओ उसका गायन नहीं करेंगे लोग, लेकिन एक बार रुला दिया तो बस उसको ही याद रखेंगे। तो ऐसी बात होती है कि 95% लोग तो देवता हैं, लेकिन 5% कोई ऐसे वैसे आ गए और देखा अरे यहाँ ये गुस्सा कर रहा है, ओ यहाँ भी गुस्सा करते हैं लोग, तो बस वो उसका गायन हो जाएगा। ऐसे ही किससे कोई गलती हो गई, किसी कोई बड़ी मिस्टेक कर दी, कोई पुलिस वाले आ गए उसे ले गए, लोग सोचते हैं यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लेकिन 95% वी आर श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे यहाँ 90% सभी लोग उन मर्यादाओं पे चलते हैं जो यहाँ की हैं, बाकी 5% थोड़ी बहुत गलती
बिल्कुल, क्योंकि वो आते ही ऐसी दुनिया से हैं और अपनी कमजोरियां तो हर एक व्यक्ति के अंदर हैं ही, कभी कभी वो जागृत हो जाती हैं। लेकिन जो बात आपने कही ना ब्रता जी, सचमुच एक काबिले गौर है, मुझे लगता है कि इंसान की ऐसी फितरत क्यों है कि वो अच्छाइयां भूल जाता है और बुराइयों पे उसकी नजर जाती है। जैसे पूरा ब्लैक बोर्ड, यदि जो है ब्लैक बोर्ड ना हो, व्हाइट बोर्ड हो कम्प्लीटली, व्हाइट बोर्ड लोगों को नहीं देखता लेकिन एक छोटा सा दाग लग जाए तो उसपे, तो ये इंसानी फितरत ऐसी क्यों है, कैसे इसे चेंज किया जाए?
देखिए मनुष्य की मेंटेलिटी ऐसी कि उसे काला दाग दूर से, अरे सारा सफेद इतना अच्छा ये और ये काला दाग, हाँ गड़बड़ है कुछ,
दाल में कुछ काला है।
इसमें अपनी जो मेंटेलिटी है उसको पॉजिटिव करने की जरूरत होती है, और एक विशेष कार्य जो भगवान के द्वारा संचालित हो रहा है उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर देखने की जरूरत होती है। मनुष्य में क्या है, कईयों की नेचर ही ऐसी होती है कि वे हर जगह से कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेंगे, ये कईयों में होता ही है। कितना भी अच्छा काम किया वो ये जरूर कहेंगे कि अगर ये और अच्छा हो जाता तो वाह कितना अच्छा होता, वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे ये बहुत अच्छा, अच्छा ये अच्छा काम तो किया है लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ रख दी तुमने, इसको ठीक करो। तो ये मनुष्य के नुक्स निकालने की, करेक्ट करने की एक आदत होती है, और जो लोग थोड़े निगेटिव हैं उनकी भी आदत हो। देखिए हमारे यहाँ अभी शिविर चालू हुए हैं और अभी 5,000 लोग हमारे यहाँ शिविर करने आए, सब नए लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और जिन्होंने अभी हमारे बारे में कुछ भी नहीं सुना ऐसे भी इसमें से 1,000 लोग तो हैं। तो हर एक का देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है ना। वो यहाँ आने वाले देवता तो कोई नहीं है, अब वो हर एक क्या देखता है। कोई कहेगा वाह कितना सुंदर डिसिप्लिन है, वाह कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, समय पर भोजन मिल रहा है, कोई देर नहीं हो रही, यहाँ बिल्कुल शांति है, खुशी का माहौल है। सो है, लेकिन उसमें से 5-10 ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हाँ इनके पास पैसा बहुत है इसलिए ये सब सबको खिला पिला रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि सबको खिला रहे हैं, कितना अच्छा कार्य हो रहा है, इनके पास पैसा बहुत है इसलिए खिला रहे हैं सबको। तो ये हर एक का अपना एटीट्यूड और कैसी नुक्स निकालने की उसकी आदत है उस पर डिपेंड करता है। हमें पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छे कार्यों को जितना हम अप्रिशिएट करते हैं लोगों में अच्छे कार्य करने की उमंग आती है।
जी जी जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों कितनी सारी चीजें हम लोगों को प्राप्त होती रहती है ना, और वैसे भी आज शुरुआत में भी आप लोगों को आइसक्रीम भेजा है, चख के जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, और ये आइसक्रीम लगातार आप खाते जरूर रहिएगा क्योंकि सफलता इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होगी। इन पे बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे ये हमारे जीवन में शामिल हो जाए, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तब तक कहीं ना कहीं सफलता हमसे दूर होती रहती है। बहुत अच्छी बात है कि हम क्यों ना इन चीजों को अपने जीवन में लाएं और साथ साथ अपने जीवन को प्रकाशित करते चलें, अपने जीवन में खुशहाली को लाते चलें, और न केवल हम खुद खुशहाल हों बल्कि दूसरों को भी खुशी जरूर दें। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम खुश होते हैं तो जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो जैसे ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना हम खुद भी खुश हों, दूसरों को भी खुशी प्रदान करते चलें, ताकि हमारे आसपास का पूरा जो माहौल है, पूरा समाज है, पूरा संसार है, खुशहाली से परिपूर्ण हो जाए। यही तो हम सबकी कामना है ना। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशहाली बांटते रहिएगा। कल पुनः इसी समय आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।